الحمد لله كفى، الحمد لله كفى، سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ ملے گا جب اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ان 7 لوگوں کا تذکرہ پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے. کل کی مجلس میں اس شخص کا تذکرہ ہوا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 7 میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ اس کو کسی ذی وجاہت عزت دار عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے آگے سے اس کو جواب دیا، انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس حوالے سے ہم نے اس کی 2-3 مجلسوں میں گفتگو کی اور یہ بتایا کہ یہ جو سچویشن آ جاتی ہے کہ جہاں کوئی عزت دار عورت وہ یہ دعوت دینے والی بن جائے، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں اور اس میں سے ایک صورتحال اور اہم صورتحال وہ یہ ہوتی ہے کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ اختلاط جب ہوتا ہے تو یہ صورتحال بن سکتی ہے. یہ ان نون 2 لوگ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ گناہ کی دعوت دے دے. عورت انگریز بھی ہو، مغربی بھی ہو، مشرقی بھی ہو، مغربی ہو، جو عورت ہو، ایسے ان نون بندوں کو گناہ کی دعوت جب تک کہ وہ کام ہی یہ کرتی ہو گناہ کرنے کا، عورت کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو یہ صورتحال پیدا اس وقت ہوتی ہے جب مرد اور عورت میں اختلاط ہوتا ہے، آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، ملاقاتیں آسانی سے ہو جاتی ہیں اور شریعت نے ان ملاقاتوں سے ہی ہمیں روک دیا. قرآن پاک کی مبارک آیتوں میں اللہ نے حکم فرما دیا کہ نہ مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں، نہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے نرم گفتگو کریں. اگر کسی وجہ سے کوئی ضرورت کی وجہ سے گفتگو کرنی پڑتی ہے یا کوئی لین دین کرنا بھی پڑتا ہے تو وہ پردے میں ہو. اور پھر سب سے اہم قرآنی اصول اللہ نے بتا دیا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، کہ عورت اپنے گھر میں ٹھہری. اور کل کی مجلس میں اسی حوالے سے گفتگو ہوئی کہ سارا بگاڑ معاشرے کا عورت کے گھر سے باہر نکلنے سے ہوتا ہے. عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو مردوں سے اختلاط ہوتا ہے اور فیملیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر بیوی بیوی نہیں رہتی، ماں ماں نہیں رہتی، بیٹی بیٹی نہیں رہتی، گھر ٹوٹ پوٹ کا شکار، اکیلے پن کی زندگی. اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے مغربی دنیا میں دیکھ رہے ہیں. تو عورت مرد آپس میں اختلاط جہاں آسان ہوگا، عقلی طور پہ بھی انسان دیکھ سکتا ہے، تجرباتی طور پہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ معاشرہ ٹوٹ پوٹ کا شکار، اور جہاں عورت پردے میں رہتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، وہاں فیملی سسٹم سٹرانگ ہوتا ہے، آپس کی محبتیں برقرار ہوتی ہیں اور عورت بادشاہوں کی طرح رہتی ہے. کل کی مجلس میں ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو मगरबी औरत है, यानी जो अमेरिका यूरोप की औरत है, उसने अपने आप को बहुत ही सस्ता बेच दिया। मर्द को शहवत अगर औरत से पूरी करनी है तो शरीयत कहती है कि नहीं, उसका पूरा इंतजाम तू कर, एक बहुत बड़ा मेहर दे, फिर उसके साथ जो है तो उसके घर का इंतजाम कर, उसके खाने पीने का इंतजाम, उसके कपड़े वगैरह का इंतजाम, और फिर घर में उसका राज। तो औरत को ये सब दिए बगैर आराम से औरत के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना, ये तो औरत ने अपने आप को सस्ता बेच दिया। और आज की मगरबी औरत इस चीज को रियलाइज करती भी है कि जी जो हमारा सिस्टम है उससे बेहतर इस्लाम का सिस्टम है, कि जहां मुझे इज्जत भी मिलती है, जहां मैं दर दर घूम नहीं रही साथी तलाश करने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कि इन दोनों ममालिक, इन दोनों जगहों में, अमेरिका में, यूरोप में, इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन दीन है, मगर इसमें खवातीन के इस्लाम में आने की तादाद ज्यादा है। कि जो सिस्टम वेस्ट का है वो खवातीन के लिए तो बिल्कुल तकलीफ दे, बहुत ही ज्यादा परेशान कुन सिस्टम है। तो कल के मजलिस में हमने ये सारी गुफ्तगू की कि नबी अलैहिस्सलाम ने 7 लोगों को जो तस्करा फरमाया, उसमें से एक वो जिसको औरत दावत देती है गुनाह की, और वो उसको कहता है मैं अल्लाह से डरता हूं, और ये सारी सूरत हाल जब पैदा होती है, जब मर्द और औरत का इख्तलात होता है। मगर मर्द में ये हिम्मत आ जाना, ये बहुत बड़ी नेकी है। औरत अगर मना कर देती है, ये इतनी बड़ी नेकी नहीं है, वो नेचुरली मना, किसी की दावत अगर आ रही है, यहाँ ये वाकयात आते हैं, ये हिरासा कर रहे हैं औरत को रोड के ऊपर, कॉलेज से बच्ची बाहर निकलती है तो किसी ने आवाज लगा दी, तो आराम से वो औरत मना करती है, गुस्सा भी करती है। मर्द के लिए सिस्टम और है कि अगर कोई औरत यूं दावत उसको दे तो उसको मना करना बड़ा मुश्किल काम उसके लिए। तो इसलिए शरीयत ने कहा कि जिसने मना कर दिया, हदीस पाक में आता है कयामत के दिन उसको अर्श का सहारा, और मना करने वालों की एक मिसाल बयान करना बहुत यहाँ जरूरी है। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान फरमाते हैं अपने एक शागिर्द का वाकया, कि जो बहुत ही गरीब था मगर जाहिरी शक्लो सूरत जिसामत के एतबार से बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, तो गुर्बत में जिंदगी गुजर रही थी, मगर हजरत का शागिर्द था। अपने घर से मदरसा चल के जब पहुंचता तो रास्ते में लोग मुड़ मुड़ के देखते कि ये कौन खूबसूरत नौजवान जा रहा है। रास्ते में एक नवाब साहब भी रहते थे, और नवाब साहब की बेटी भी हर रोज खड़ी होकर देखती थी, अमीर बाप की बेटी थी। एक दिन अपनी ख्वाहिश पे काबू ना रख सकी, अपनी मुलाजमा से कहा कि बाहर जाके जब ये आदमी आए तो उसको कहना कि आपने एक आदमी है मदरसे के तालिब इल्म जो थे, और मेरी जो मालकिन है वो बीमार है, मौत के करीब है, आप आके कुछ दुआ कर दें, उन पे दम कर दें, और कहा कि जब वो अंदर आ जाए तो तुम कुंडी लगा देना। अब ये तालिब इल्म रास्ते में जा रहा था, नवाब साहब की बेटी की मुलाजमा ने यही बात की, उसे कहा अच्छा मौत के करीब है तो मैं आके दम कर देता हूँ, दुआ कर लेते हैं। जैसे एक बंदा फिक्रमंद होता है किसी को मौत के करीब देख के, अंदर गए तो मुलाजमा ने पीछे से कुंडी लगा दी। उन्होंने कहा, भाई कौन बीमार है यहाँ? आगे से नवाब साहब की बेटी कहती है, मैं आपकी मोहब्बत में बीमार। अब इतना गरीब आदमी, नौजवान, और इसको एक नौजवान खूबसूरत लड़की कह रही है, मैं आपकी मोहब्बत में बीमार। और फिर कहा कि आप मेरे साथ गलत काम करें वरना मैं लोगों को बताऊंगी कि आप जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हो गए। अब तो एक तरफ वैसे ही एक मर्द की अपना एक रुझान और दूसरी तरफ इतना ज्यादा जोर कि अगर नहीं ये काम करेंगे तो फिर बदनामी भी है। वो आसान रास्ता तो यही था कि ये काम कर देते। मगर नेक आदमी था, अल्लाह से खौफ रखने वाला पाक दामन इंसान, अल्लाह से माफी मांगी, इस्तग़फ़ार किया कि या अल्लाह इस सूरत हाल में पहुंच गया कि कहां हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द आलिम दीन बनने वाला और कहां जानी बन जाऊंगा। खूब अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह ने दिल में डाला। उस औरत से कहा कि अच्छा मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, बस थोड़ी देर के लिए बैतुलखला पहले जाना जरूरी है। उसने कहा, जी बहुत बेहतर है, आप यहाँ चले जाए। बैतुलखला में गए और उस जमाने में बैतुलखला में जो गंदगी होती थी वो एक तरफ पड़ी होती थी, सारी गंदगी अपने जिस्म पे लगा दी, कपड़ों पे भी लगा दी। अब बैतुलखला से जब बाहर आए उस लड़की को देख के इतनी घिन आई और इतना ज्यादा उसका दिल खराब, उसने कहा, निकल जाए यहां से, दफा हो जा, तू तो कोई पागल है। तो अपना जिस्म तो आलूदा कर गए मगर अपनी पाक दामनी को, ईमान को बचा गए। अब बाहर निकले तो क्लास में जाने का वक्त था और देर हो गई थी और कपड़े सारे आलूदा थे नापाकी से, और गुर्बत इतनी थी कि इसके अलावा और कोई कपड़े भी नहीं थे। अपने घर वापस भागे, तहबंद बांध के ये कपड़े जल्दी जल्दी धोए और फिर ये कपड़े जो है वापस पहने, गीले कपड़े पहन के, और भागे क्लास की तरफ। जिस वक्त क्लास में पहुंचे तो हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की क्लास अपने इख्तिताम पे थी, बहुत देर हो गई। जैसे ही आके बैठे तो हजरत ने फरमाया कि आज ये खुशबू कहाँ से आई है? अब ये समझे कि जी मेरे कपड़ों में जो बदबू है ना वो अभी तक सही तरह से निकली नहीं है, तो हजरत इसको खुशबू फरमा रहे हैं। क्लास मुकम्मल हुई तो हजरत के पास जाके माजरत की कि हजरत माफी चाहता हूँ, मेरे कपड़ों की शायद बदबू सही तरह से निकली नहीं है, मेरे साथ ही मामला हादसा हो गया। हजरत फरमाया, ऐसी खुशबू आ रही थी कि जिंदगी में ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। फिर पूरी जिंदगी उनके जिस्म से यूं खुशबू आती थी, नाम कुछ और था मगर इस खुशबू की वजह से ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाह अलैह नाम पड़ ये खुशबू वाले बुजुर्ग। तो जो शख्स अपनी इफ्फत को बचाता है, छोटा काम नहीं करता बड़ा काम करता है, इसलिए कयामत के दिन बड़ा इकराम है। अरबों खरबों लोग देख रहे होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बारे में ये कह रहे होंगे कि ये दोस्त है। अल्लाह ताला हमें भी पाक दामनी वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन مستهتر وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.